कहां से ये चक्र समाप्त हो सकता है? सिर्फ एक स्थान है, वो स्थान कौन सा है? इंद्रियों से जब विषय ग्रहण होते हैं, तब यदि अपन राग द्वेष न होने दें तो संसार चक्र वहीं समाप्त होता है। राग द्वेष होंगे तो फिर वो वापस पूरा सर्कल बनेगा, राग द्वेष न हो तो फिर खेल खत्म, संसार भ्रमण समाप्त। तो यहां पर अपना आज का व्याख्यान भी समाप्त हो रहा है। कल शाम को स्वाध्याय में निकला था दोपहर में कि त्रस पर्याय में विकलेंद्रीय जीवों के पर्याय को कोई जीव प्राप्त करता है, फिर उस पर्याय को छोड़ देता है। अब दोबारा विकलेंद्रीय जीव बनने के लिए उसको कभी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन का भी काल लग सकता है। कोई एक जीव की बात है, एक जीव अभी दो इंद्रिय तीन इंद्रिय या चार इंद्रियों वाला जीव बन जाता है और फिर वो पर्याय छूट गई। अब फिर से अगर उसको विकलेंद्रिय में जाना हो तो उसका अधिकतम काल जो बताया, कम से कम काल तो इतना है कि वह अंतर्मूर्त में वापस वहां जा करके जन्म ले सकता, क्षुद्र भवक ग्रहण बताया, और अधिक से अधिक जो काल है वो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्षेत्र परिवर्तन में जब वो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जब शरीर की अवगाहना को एक एक प्रदेश बढ़ाता हुआ वृद्धि को प्राप्त होगा, वो पॉइंटर आगे खिसकता जाएगा, तो फिर इसमें कितने पुद्गल परिवर्तन हो जाएंगे? जब एक विकलेंद्रीय पर्याय में ही अगली बार विकलेंद्रीय जाने में बीच का अंतराल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन लिखा है उसमें, अनंत कालह, उसका पर्यायवाची शब्द दिया अनंत कालह, अनंत काल निकल जाता है। तो फिर ये क्षेत्र परिवर्तन कब होता होगा? फिर काल परिवर्तन उससे भी विकट है और भव परिवर्तन उससे भी भयंकर है। मतलब इसमें कोई दो मत नहीं है कि भव्य जीव हो या अभव्य जीव हो, यदि पंच परिवर्तन में भ्रमण में है तो वो अनंत बार मुनिपद धारण करके, वो भी अनंत बार मुनिपद धारण करके जो ग्रैवेक जाने वाले होंगे, ग्रैवेक जाने के लिए मुनिपद के साथ नाराज संघनन तो कम से कम अपेक्षित है। अर्धनाराज कीलक या असंप्राप्ता श्रीपाटिका संघनन के साथ मुनिपद संभव है, लेकिन ग्रैवेक असंभव है। ग्रैवेक जाने वाले मुनि कम से कम वज्रषभ नाराज संघनन, वज्र नाराज संघनन और नाराज संघनन के धारक होते ही हैं, उसके बिना वहां नहीं जा सकते। तो अनंत बार तो वहां जाना हो गया। अब इस पर से अपन एक बात और विचार कर लो साथ में कि जब मुनि पद धारण करके अनंत बार जीव ग्रैवेक गया है तो श्रावक पद धारण करके कितनी बार कहां कहां नहीं गया होगा। सोचने की बात है कि मुनि के महाव्रतों को धारण करके पूरी चर्या का पालन करते हुए भी जब इतना ऊपर ऊपर तक जाकर भी संसार में भटकता रहा, तो जितनी बार मुनि बना होगा ये जीव, क्या श्रावक उससे कम बना होगा? जो चीज कठिन है वो कम होती है या जो सरल है वो कम होती है? तो मुनिपद तो बहुत विकट है, बहुत कठिन है। तो मुनिपद अगर अनंत बार धारण किया है जीव ने, तो फिर श्रावक पद अनंतानंत बार कम से कम धारण किया होगा, और असंयमी पद उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। तो अगर कोई कहे कि भाई मुनिपद धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सम्यक ज्ञान न ला दो, दौलत राम जी ने लिखा ना, दुर्लभ निज में मुनि साधु, अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत वीरियापद, पर सम्यक ज्ञान न ना दो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। तो सम्यक ज्ञान कितना दुर्लभ है ये बताया कि अनंत बार ग्रैवेक तो चले गए, मुनि पद धारण कर लिया, लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो अगर कोई सोचे कि जब इतना कठिन जो मुनिपद है वो भी सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से सुलभ है, तो फिर विचारने की बात है कि आज जब अपने पास सुलभ वस्तु भी अप्राप्त है तो अपन ये सपने देखें कि हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए। यानी अभी मुनिपद या फिर अणुव्रत की तरफ तो गति नहीं है, और सम्यक ज्ञान प्राप्ति के सपने देखो। आपको बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो हमने ये कही कि जैसे संसार भ्रमण में अनंत बार जीव मुनिपद को धारण करता है, कोई दो मत नहीं है, इसको हम स्वीकार करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अभव्य जीव करता होगा, भव्य जीव नहीं करता होगा। अगर ऐसा कहोगे तो फिर भव्य जीव पंच परिवर्तन कैसे करेगा? भव्य जीव नहीं करता क्या पंच परिवर्तन? क्यों नहीं करेगा? जब तक वो संसार, परिवर्तन का कारण क्या है? भव्यत्व या अभव्यत्व? परिवर्तन का कारण मिथ्यात्व और कषाय है। भव्यत्व और अभव्यत्व का काम ही अलग है। वो तो भव्यत्व उस शक्ति का नाम है जिसके प्रकट होने पर जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करने योग्य होता है और प्राप्त भी करता है। वो तो हम इसीलिए तो बता रहे हैं कि यदि अपन उस बात को दृष्टि में रखें कि नहीं वो अभव्य की अपेक्षा से है कि अभव्य अनंत बार जाता होगा मुनिपद धारण करके, तो इसका मतलब ये हो गया कि भव्य पंच परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि भाव परिवर्तन बनेगा नहीं भव्य का। भाव परिवर्तन दूर दूर रहा, क्योंकि भाव परिवर्तन में तो आयु की एक एक स्थिति और उसके एक एक अनुभाग, कषाय अध्यवसाय सारे बहुत बारीक बारीक परिणाम भी उसमें भाव परिवर्तन में भरे जाते हैं। भाव परिवर्तन में उतना नहीं है, सिर्फ एक एक समय की स्थिति बढ़ रही है। उस एक एक समय की स्थिति बढ़ाना भी मामूली काम नहीं है, लेकिन उस स्थिति के योग्य कषाय स्थान, एक स्थिति के योग्य कषाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। और फिर कषाय अध्यवसाय स्थान में जो अनुभाग बंद के योग्य स्थान होते हैं वो उससे असंख्यात लोक प्रमाण अधिक होते हैं। माने असंख्यात में असंख्यात का गुणा कर दो, जैसे निगोद का वो वर्णन था ना उस प्रकार से। और फिर उसके योग्य फिर योग स्थान, इसमें आगे वर्णन बताएंगे। तो ये सब भाव परिवर्तन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। भाव परिवर्तन में तो एक एक समय की स्थिति बढ़ती जा रही है, भाव परिवर्तन में तो परिणामों के उस एक समय में असंख्यात भेद हो जाते हैं, और अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ने पर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ये भी एक विचित्र गणित है। ऐसा नहीं कि असंख्यात गुणी निर्जरा के लिए असंख्यात गुणी विशुद्धि बढ़ा दो, नहीं, विशुद्धि तो अनंत गुणी बढ़ानी पड़ेगी तब असंख्यात गुणी निर्जरा में वृद्धि होगी। तो ये भाव परिवर्तन सबसे भयंकर है, बहुत विकट है। इसलिए अंतिम ग्रीवक लो की हद, इसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि जब जीव ने अनंत बार मुनिपद धारण करके ग्रवेक तक उत्पत्ति प्राप्त की है, तो फिर मुनिपद जो बहुत कठिन है उसको अनंत बार करने वाले ने श्रावक पद कितने बार किया होगा? कठिन काम जिसने अनंत बार कर लिया तो फिर जो उससे सरल है वो कितनी बार किया होगा? उससे कम किया होगा क्या? उससे ज्यादा ही किया होगा। और फिर श्रावक पद भी असंयम से तो कठिन है, तो असंयम में कितनी बार रहा होगा? उससे भी अधिक। अब इसके बाद विचार करने की बात है कि आज जो असंयम में बैठा हुआ प्राणी है वो कह रहा है कि मुनिपद धारण करना तो मामूली बात है, क्योंकि जीव ने अनंत बार धारण किया है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने योग्य है। मुनिपद धारण करने से क्या होगा? संसार का भ्रमण समाप्त थोड़ी होगा। अनंत बार धारण कर चुका है जीव, तो अब जो धारण कर लिया उसके पीछे मत पड़ो, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ उसको प्राप्त करो। यहां पर एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, माना कि जो धारण कर लिया वो पुरानी बात हो गई, जो नहीं धारण किया वो नवीन है, उसको प्राप्त किया जाए। लेकिन अब प्रश्न ये है कि सरल क्या है? सरल क्या है? अब दुर्लभ अनुप्रेक्षा में क्या बताना चाह रहे हैं कि मुनि पद धारण करने से भी दुर्लभ सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है। तो क्या हुआ, मुनिपद कठिन हुआ कि सरल हुआ? सरल हुआ ना। तो जिसने सरल को प्राप्त नहीं किया वो कठिन को पाने के सपने देख रहा है, ये उचित है क्या? आ रहा है समझ में? अगर ये कहो कि भाई सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मुनिपद तो कई बार प्राप्त किया और मुनिपद तो आसान है, तो जो आसान है वही करके बताओ ना पहले। आया समझ में? जो सुगम है, जो सुलभ है, जो सरल है उसको कर लो, फिर जो कठिन है वो तो फिर देखा जाएगा बाद में। अपने मन की इच्छा से कोई भी सम्यक ज्ञानी नहीं बनता, उसके योग्य पुरुषार्थ करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। इसलिए किसी भी कथन का विपरीत अर्थ नहीं निकालना। क्या है कि मुनिपद अनंत बार धारण किया, इसका अर्थ ये नहीं है कि मुनिपद की महिमा घट जाए, क्योंकि वो आचरण जो है जिनेंद्र प्रणीत है, और जिनेंद्र प्रणीत आचरण होने के कारण मुनिपद की एक एक क्रिया, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लघु तत्व स्फोट के 25वें अध्याय में कहा है, पूज्य है वो क्रिया, अवमाननीय नहीं है। इसलिए कभी कभी अपन कोई पंक्ति पढ़कर, वो किसी विवक्षा से कहते हैं आचार्य कि भाई क्रियाओं में कहां फंसे पड़े हो, थोड़ा अंदर भी जाओ, आत्म ध्यान भी करो। ये किसी दृष्टि से कथन किया गया है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि क्रियाओं की अपन अवमानना करें। मुनि की क्रिया मुनि की ही क्रिया रहेगी और वो आराध्य रहेगी। इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं ज्ञान ने और क्रिया ने दो नए हैं। उसी लघु तत्व स्फोट में ज्ञान ने और क्रिया ने, हम तो ये कहते हैं कि जिनने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय का अध्ययन किया है उनको दो ग्रंथों का अध्ययन और करना चाहिए। एक तो है योग सार प्रावृत, क्योंकि समय सार में कई बार ऐसा शब्द आता है बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक, इसका क्या मतलब है? अमित गति आचार्य का योग सार प्रावृत भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ है। तो बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या है? तो अभी तक जितने लोग जो भी अर्थ लगा रहे हैं वो मनमानी कर रहे हैं। हरिवंश पुराण में लिखा है कि जिस शब्द का जो अर्थ पूर्वाचार्यों ने ग्रहण किया है उसी अर्थ को लेकर अपने को स्वाध्याय करना चाहिए, वरना अपन निश्चित भटकेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। अपन अगर कोई दूसरा अर्थ निकालेंगे किसी शब्द का तो भटकना ही भटकना है। सम्यक दर्शन का अर्थ आप अगर ये लगाएं कि डॉक्टर ने चश्मा पहना दिया अब आंखों से अच्छी तरह दिख रहा है, वो सम्यक दर्शन है क्या? आंखों से दिख नहीं रहा था ठीक, अब डॉक्टर ने नंबर दे दिया, चश्मा बढ़िया बुलवा लिया हमने, अमेरिका से बनवाया है, वो चश्मा पहन लिया अब साफ दिखने लगा, ये सम्यक दर्शन है? है ही उसका सम्यक दर्शन का अर्थ, इसको कौन नकार सकता है दुनिया में? सम्यक याने ठीक ठीक और दर्शन याने दिखना। ये अर्थ अगर आप निकालते हो तो कभी भी शास्त्र का रहस्य आपके दिमाग में आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये अर्थ सम्यक दर्शन का जहां वर्णन है वहां है ही नहीं। वहां पर जो पूर्वाचार्यों ने अर्थ निकाला है वही ग्रहण करना पड़ेगा। इसी प्रकार हर जगह हरिवंश पुराण में बहुत सुंदर श्लोक है वो, उसमें आचार्य महाराज ने यही कहा है कि पूर्व आचार्यों ने जिस शब्द का जो अर्थ निकाला है उस अर्थ को लेकर के आप स्वाध्याय करो तो आपको स्वाध्याय का लाभ होगा, आपको शास्त्र का मर्म पकड़ में आएगा। लेकिन आप अगर उसका अर्थ अपने मन से निकालते हो या किसी और मन से निकालने वाले के अनुसार उसको ग्रहण करते हो तो फिर कभी भी शास्त्र के मर्म तक नहीं पहुंच सकते। अभी एक किताब आई थी उसमें एक श्लोक लिखा था, एक ही श्लोक लिखा था बाकी कुछ नहीं लिखा था, कुदेवागम लिंगिनाम भयाशास्नेह लोभाच्च कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयंचैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः। शुद्ध है दृष्टि जिसकी, ऐसे लोगों को यानी सम्यक दृष्टि जीवों को भय के कारण, आशा के कारण, स्नेह के कारण और लोभ के कारण कुदेव, कुशास्त्र और कुलिंगियों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनकी विनय भी नहीं करनी चाहिए। उसके अर्थ में उन्होंने लिखा था कुदेव के बाद ब्रैकेट्स में लिखा था सरागी देव। तो हमने उसका जवाब उनके पास भेजा था, पता नहीं पहुंचा कि नहीं, हमने ये जवाब दिया कि ये सरागी देव जो है वो कुदेव का लक्षण नहीं है। सरागी देव सर्वार्थ सिद्धि का देव भी है, पर सर्वार्थ सिद्धि का देव कुदेव है क्या बताओ? सरागी देव सौधर्म इंद्र भी है कि नहीं? अब पहले आप इसके बारे में तय कर लो कि है कि नहीं। सौधर्म इंद्र सराग है कि वीतराग है? पर वो कुदेव है क्या? तो फिर यही भूल हो जाती है लोगों की। जब शब्द का अर्थ गलत निकाला तो भावार्थ सही कहां से निकलेगा? कल हमने 5 प्रकार से अर्थ बतलाए थे, लेकिन उसमें एक छूट गया था। शब्दार्थ और अन्वयार्थ एक ही चीज है, तो उसको आप अन्वयार्थ लिख लीजिए। जो लोग लिख रहे हैं 5 प्रकार के अर्थ, किसी भी गाथा का अर्थ निकालना हो तो 5 प्रकार से निकाला जाता है। पहला अन्वयार्थ है। अन्वयार्थ का मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के लिए हम एक नमूना देते हैं आपको, ये 63वीं गाथा देखो, हम अन्वय हम करके बताते हैं आपको। ये जो ऊपर वाली पंक्ति है 63वीं गाथा की, मिल गई? इसमें अपन अन्वय ऐसे लगाएंगे, राया विय राजा भी, मतलब एक नंबर डलेगा राजा के ऊपर, विय के ऊपर 2 नंबर डलेगा, फिर 3 नंबर डलेगा दुखीय कम्म बसा दो, दुष्कृत कर्म के प्रभाव से, असूय कीड़ा हो दी, अपवित्र कीड़ा होता है, बन जाता है, ये अन्वय कहलाता है। अन्वय का मतलब क्या होता है? गाथाओं में या श्लोक में जो शब्दों का क्रम छंद के अनुसार बनाना पड़ता है ताकि अपन उच्चारण पाठ विधिवत कर सकें, तो कुछ शब्दों को आगे पीछे लिखा जाता है। अब इसका उदाहरण क्या है? जैसे अपन हिंदी कोई कविता ले लो, मरना सबको एक दिन। अब इसमें अन्वय निकालोगे तो क्या निकलेगा? एक दिन सबको मरना। लेकिन एक दिन सबको मरना आप वहां लिखोगे छंद में, तो फिर उसको दोहे में पढ़ नहीं सकते। इसलिए छंद में क्या होता है कि शब्दों के क्रम को बदला जाता है, लेकिन अर्थ निकालते समय उसको वापस गद्य की भाषा में जोड़ा जाता है। इस जोड़ने की पद्धति को अन्वय कहते हैं, और अन्वय से निकलने वाला जो अर्थ होता है उसको अन्वयार्थ कहते हैं। तो सबसे पहली कला किसी भी शास्त्र का अर्थ करने के लिए ये अन्वयार्थ की विधि आपको मालूम होनी चाहिए। पहला अर्थ अन्वयार्थ। फिर एक मतार्थ होता है, क्योंकि कोई भी श्लोक जो कहते हैं आचार्य, वो एक ही प्रकार के श्रोता नहीं होते कि जिसको कह दिया जाए। विभिन्न मत की मान्यता, विभिन्न मान्यताओं वाले लोग रहते हैं। तो इस श्लोक में या गाथा में आचार्य महाराज किस मान्यता का निषेध करना चाहते हैं और किस मान्यता को स्पष्ट करना चाहते हैं? मतार्थ। फिर उसमें दृष्टियां होती हैं कि ये कौन सी दृष्टि से कथन है, निश्चय से कही हुई बात है, व्यवहार से कही हुई बात है, या फिर द्रव्य की मुख्यता से कथन किया है, या पर्याय की मुख्यता से कथन किया है, उसको कहते हैं नयार्थ। और फिर सिद्धांत में इसका कैसा क्या प्रतिपादन है, उसकी जानकारी के लिए आगमार्थ, चौथा आगमार्थ है। अन्वयार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ। और जब ये चारों अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं तब उस श्लोक का या गाथा का भाव अपने अंदर आ जाता है। बस वो जो आखिरी वाला है उसका नाम है भावार्थ। आ गया समझ में? अगर सीधे भावार्थ निकालो तो स्खलन हो जाएगा। जैसे कई ऐसे ग्रंथ छपे हुए हैं वर्तमान में उपलब्ध हैं, अगर यहां पर रखे हों, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है क्या आपके पास मंदिर में? तो अभी दिखा दें हम आपको कुछ, क्योंकि सैंपल लगे हाथ मिल जाए तो अच्छा रहता है। जयपुर अथवा सोनगढ़ से प्रकाशित जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है वो प्रति देखना, वो प्रति नहीं है। गुजराती वाला पुरुषार्थ सिद्ध उपाय है? गुजराती वाला, तो जिसके भी पास हो तो फिर उसमें 134वीं गाथा का भावार्थ देख लेना, उसमें रात्रि भोजन त्याग का वर्णन है। और रात्रि भोजन त्याग के वर्णन में उन्होंने भावार्थ जो निकाला है उसमें ये लिखा है कि यदि किसी कारणवश पाक्षिक श्रावक, अब उसके पहले वाली लाइन और सुना देते हैं, उसमें ये लिखा है, सबसे पहली लाइन ये कि रात्रि में भोजन करने में और बनाने में सदैव हिंसा है, लेकिन रात्रि भोजन करने की अपेक्षा रात्रि भोजन बनाने में अधिक हिंसा है। वाक्य देखिए आप, भावार्थ निकाल रहे हैं, रात्रि भोजन करने की अपेक्षा रात्रि भोजन बनाने में अधिक हिंसा है, इसलिए अहिंसा व्रत धारण करने वाले को, एक एक शब्द पर ध्यान देना, प्रथम ही इसका त्याग करना चाहिए। किसका? नहीं, बनाने का, क्योंकि बनाने में ज्यादा हिंसा है, खाने में नहीं है। क्या कहा उन्होंने? पहली लाइन क्या है कि रात्रि भोजन करने में और रात्रि भोजन बनाने में सदैव हिंसा है, ये तो स्पष्ट है कि दोनों में हिंसा है, ये तो अपन पहले से जानते हैं। अब आगे जो नई बात बताना चाह रहे हैं वो क्या है कि रात्रि भोजन करने की अपेक्षा रात्रि भोजन बनाने में अधिक हिंसा है। क्या गाथा का ये भावार्थ है आचार्य महाराज ये बताना चाह रहे हैं क्या? अब ये बताने से सुनने वाला या पढ़ने वाला क्या ग्रहण करेगा भाव? और फिर इसलिए आगे क्या लिखा है, इसलिए अहिंसा व्रत पालन करने वाले को प्रथम ही रात्रि भोजन बनाने का त्याग करना चाहिए। तो अब शंका यह उठेगी कि खाने का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर उसके आगे की पंक्ति लिखी है, खास तौर से बाजार की बनी हुई वस्तुओं का तो त्याग कर ही देना चाहिए। आगे अगस्त नहीं, अगस्त में नहीं, खैर हमें जितना याद है हम बता ही रहे हैं, लगभग वैसी मिलेंगे आपको पंक्तियां, देख लेना। फिर आगे आगे कहते हैं कि यदि किसी कारणवश पाक्षिक श्रावक त्याग न कर सके तो उसको क्या करना चाहिए? पान मेवा सुपारी पानी आदि वस्तुएं जिनमें बिल्कुल आरंभ नहीं करना पड़ता वो ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है। ये वाक्य लिखा हुआ उसमें, मतलब आप 17,300 प्रतियां निकल चुकी है उसकी, आपको देखना हो तो खुद देख लेना, हमारे कोई अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहे हम। उसमें आप देखिएगा कि ये जो भावार्थ है क्या गाथा का भावार्थ है? गाथा क्या है? किम वा बहु प्रलपित रीति सिद्धम यो मनोवच काये ही परिहरित रात्रि भुक्तिम सतत महिंसान से पाले यदि। ज्यादा बोलने से क्या लाभ है? जो मन वचन काय से रात्रि भोजन का त्याग करता है वो निरंतर अहिंसा की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? अहिंसा की। गाथा ये कह रही है और फिर भावार्थ क्या कह रहा है? पान वेवा सुपारी अगर करना चाहे, ग्रहण करना चाहे तो आरंभ तो नहीं करना पड़ता, उसको रात में पकाना तो नहीं पड़ता, कर सकता है। और फिर आगे लिखा है कि वो यदि इसके बिना न चले तो कर सकता है। अब ये सब बात जो है घुमाने फिराने वाली बात है, ये स्पष्ट व्याख्यान नहीं है। अब उसको जितने लोगों ने 17,300 प्रतियां छपी है, अब उसमें से कम 1,000 लोगों ने तो उसको सच माना होगा, नहीं माना होगा? अनुमान तो ये कहता है कि अगर 17,000 में से मान लो 16,000 ने सच नहीं माना उसको, वैसे इतने दिमाग वाले लोग हैं नहीं हिंदुस्तान में, वो तो जो लकीर के फकीर ज्यादा हैं यहां पर। संभव है कि 17,300 प्रतियां हैं तो फिर उसको पढ़ने वाले 17,000 से अधिक ही होंगे, तो यदि किसी ने उसको सच माना और वो पान मेवा सुपारी खा रहा है, उसकी धारणा क्या है कि जिनवाणी में लिखा है इसलिए खा रहा हूं, मैं निष्पाप हूं, ये हुई कि नहीं धारणा? तो भावार्थ गलत हो जाता है। अगर अपन सही अर्थ ना निकालो, अन्वयार्थ निकालो, मतार्थ निकालो, नयार्थ निकालो, आगमार्थ निकालो, फिर भावार्थ निकालो, तो सुंदर अर्थ निकलता है। तो अभी अपन भाव परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो भाव परिवर्तन में ये सारे भंग भी अतीत में बन चुके हैं, चिंता मत करना, ये सब अपन ने खुरापात किया है अनादिकाल से भटकते हुए। युगसार प्रावृत और दूसरा ग्रंथ लघु तत्व स्फोट, 24 भगवान की स्तुति है, लेकिन इतनी गहरी स्तुति आज तक कहीं और नहीं मिलेगी आपको। स्तुति विद्या एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, महान ग्रंथ है कहना चाहिए, बड़ा तो परिमाण में बहुत बड़ा ना हो, लेकिन समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित है, अद्भुत ग्रंथ है। फिर ये लघु तत्व स्फोट आचार्य अमृत चंद्र स्वामी, इसका अनुवाद पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य ने किया है, और वो योगसार प्रावृत का अनुवाद पंडित जुगल किशोर मुख्तार ने किया है, युगल नहीं जुगल है क्या? अच्छा अच्छा होगा। तो भाव परिवर्तन देख लेते हैं, सैनी जीव मिथ्या दृष्टि पंचेंद्री पर्याप्तक प्राणी है, तो अपने योग्य सर्व जगन ज्ञानावरण की स्थिति अंत कोटा कोटि प्रमाण बांध लेता है, तो तस्य जीवस्य उस जीव के पास कषाय आद्यवसाय स्थानानि असंख्य लोक प्रमाण प्रमितानि मात्राणि जगन्य स्थिति योग्यानि, उस जगन्य स्थिति को बांधने के लिए कषाय कितनी प्रकार की हो सकती है? तो आचार्य कहते हैं कि कषायों में फर्क होने से एकदम स्थिति बदल जाती है ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे कषाय के परिणाम बनते हैं कि जिनसे उतनी ही स्थिति का बंध होगा। सर्व जगन्य स्थिति की बात चल रही है, तो उस सर्व जगन्य स्थिति के योग्य असंख्यात लोक प्रमाण, लोक में जितने प्रदेश हैं, लोक में देखो एक अंगुल के असंख्यात विभाग में कितने प्रदेश हैं, असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में जितने समय हैं, उतने प्रदेश एक अंगुल के असंख्यात विभाग में है। तो असंख्यात लोक प्रमाण मतलब एक लोक में जितने प्रदेश, अपनी आत्मा के जितने प्रदेश उतने प्रदेश एक लोक में है। क्यों? असंख्य या प्रदेशा धर्मा धर्मिक जीवानाम, धर्म अधर्म द्रव्य और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं, बराबर असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो धर्म द्रव्य लोक में फैला हुआ है, तो धर्म द्रव्य के लोक प्रमाण प्रदेश हो गए और उतने एक जीव के हो गए, तो असंख्यात लोक में कितने प्रदेश होंगे, उससे असंख्यात गुने होंगे। तो असंख्यात लोक प्रमाण ऐसे कषाय के भाव होते हैं कि जिन भावों से सर्व जगन्य स्थिति का बंध होता है, और उसके आगे देख लीजिए, सर्व जगन्य कषाय आद्यवसाय स्थानम तत्र। अब उन असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थानों में जो सबसे छोटा सबसे जगन्य कषाय का स्थान है, जिससे वो अंत खोटा खोटी स्थिति बांध रहा है ज्ञानावरण की, उस एक सर्व जगन्य कषाय अध्यवसाय स्थान में सर्व जगन्यानुभाग अध्यवसाय स्थानम च प्राप्तस्य तद्योग्य सर्व जगन्य योग स्थानम भवति। अब उस एक सर्व जगन्य कषाय अध्यवसाय स्थान में, ये शब्दों से घबराना मत आप, है ना, सिर्फ सुनते जाओ आप, आपको आता जाएगा थोड़ा थोड़ा। जैसे क्या होता है कि पहली बार जब कोई गाना सुनते हैं तो फिर उसको अपन गा नहीं सकते, जहां दो चार बार सुन लिया तो फिर स्टार्ट हो जाता है वो, उसी प्रकार ये भी एक गीत है, जिनवाणी माता बहुत सुंदर बातें सुना रही है अपने को, तो इसमें अपन पहली बार सुनोगे तो लगेगा कि कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। स्थिति, कषाय स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बस चार बातों का ध्यान रखना आप। कौन सी चार बातें? स्थिति, वही पेट्रोल पंप का उदाहरण कल दिया था ना हमने, उसमें चार खंड है, जो आखिरी वाला नंबर है वो फटाफट बदलता है, फिर वो 10 खिसकता है तो फिर ये वाला थोड़ा एक खिसकता है, ये 10 खिसकता है तो ये वाला एक खिसकता है, और फिर ये वाला जब पूरे 10 खिसक जाता है तो फिर यहां से 10 का एक दृष्टांत जितना भी होता होगा वो देख लेना आप, तो ये वाला लास्ट में खिसकता है। अब देखिए इसका हिसाब अपन लगा रहे हैं, ये स्थितिबंध वाला जो स्थान है वो ये है, पहला लेफ्ट वाला डाबी बाजू का पेट्रोल पंप का जो लीटर वाला नंबर है ना, वो स्थितिबंध का स्थान समझ लो, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आ रहा है वो कषाय स्थान है। मैंने 10 कषाय स्थान बदलो तो फिर ये एक स्थिति स्थान आगे बढ़ेगा, मतलब अंतकोटा कोटि स्थिति में यहाँ पर असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थान खिसक जाएंगे, तो फिर एक समय अधिक स्थिति के योग्य भाव बनेंगे। अभी जो जघन्य स्थिति है उसमें एक समय अधिक स्थिति बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरे असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थान पार करने पड़ेंगे, तब जो आगे वाला कषाय स्थान आएगा वो एक समय अधिक स्थिति को बांध पाएगा। आया समझ? अब ये जो कषाय स्थान है इसमें एक कषाय स्थान जब खिसकता है तब तक उधर अनुभाग स्थान जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण खिसक जाते हैं। आ रहा समझ में? पेट्रोल पंप के दृष्टांत से एकदम सुगम हो जाता है। तो वो वहां से 10 खिसकेगा तो यहां से ये एक खिसक रहा है, तो मतलब ये हुआ कि एक कषाय स्थान आगे बढ़ाने के लिए